आप सुन रहे हैं सुनो किताब।
हेलो बच्चों, नमस्कार, आदाब। मेरा नाम रुमीजा रब है। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे आपकी कक्षा सातवीं की हिंदी की पुस्तक वसंत का पाठ 10, अपूर्व अनुभव। तो बच्चों, इस पाठ को शुरू करने से पहले आप सब अपनी पुस्तक का पेज नंबर 75 निकाल लीजिए। ओके बच्चों, आप सबने निकाल लिया। चलिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं और पढ़ना शुरू करते हैं। आपकी पुस्तक का पेज नंबर 75, पैराग्राफ नंबर 1। बच्चों, मैं पढ़ना शुरू कर रही हूँ, आप भी साथ साथ पढ़िएगा ताकि आपको समझने में और पढ़ने में कोई भी परेशानी ना हो। सभागार में शिविर लगने के 2 दिन बाद तोतो चांद के लिए एक बड़ा साहस करने का दिन आया। इस दिन उसे यासुकी चांद से मिलना था। इस भेद का पता ना तो तोतो चांद के माता पिता को था, ना ही यासुकी चांद के। उसने यासुकी चांद को अपने पेड़ पर चढ़ने का न्योता दिया था। तो बच्चों, इस पैराग्राफ में आपको ये बताया जा रहा है, ये समझाया जा रहा है कि दो लड़के हैं। पहला है तोतो चांद और दूसरा है यासुकी चांद। और बच्चों, वो दोनों सोच लेते हैं, समझ लेते हैं कि वो एक दूसरे से मिलेंगे। लेकिन बच्चों, ना ही तोतो चांद के माता पिता को पता होता है और ना ही यासुकी चांद के कि वो दोनों मिलने जा रहे हैं। और दूसरी बात बच्चों ये कि यासुकी चांद ने क्या किया, यासुकी चांद ने सोच लिया कि जो उसका पेड़ है, अब उस पे यासुकी चांद और तोतो चांद दोनों साथ मिलकर चढ़ेंगे। तो इस पैराग्राफ में बच्चों यही बताया जा रहा है। चलिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं। आपकी पुस्तक का पेज नंबर 75, पैराग्राफ नंबर 2। तोमो ए में हर एक बच्चा बाग के हर एक एक पेड़ को अपने खुद के चढ़ने का पेड़ मानता था। तोतो चान का पेड़ मैदान के बाहरी हिस्से में कुहोबुत्सु जाने वाली सड़क के पास था। बड़ा सा पेड़ था, उसका चढ़ने जाओ तो पैर फिसल फिसल जाते, पर ठीक से चढ़ने पर जमीन से कोई 6 फुट की ऊंचाई पर एक दीक्षिका तक पहुंचा जा सकता था। बिल्कुल किसी झूले की आरामदेह जगह थी। ये तोतो चांद अक्सर खाने की छुट्टी के समय या स्कूल के बाद ऊपर चढ़ी मिलती। वहां से वे सामने दूर तक ऊपर आकाश को या नीचे सड़क पर चलते लोगों को देखा करती थी। तो बच्चों, यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, एक तोतो चांद की कहानी और दूसरी और यासुकी चांद की कहानी। तोतो चांद एक लड़की है और यासुकी चांद एक लड़का है। तो बच्चों, जो यासुकी चांद और तोतो चांद ने डिसीजन लिया था, तय किया था कि वो पेड़ पे चढ़ेंगे, तो यहाँ पे इस पैराग्राफ में उसी पेड़ के बारे में बताया जा रहा है कि तोमोए जो जगह है वहाँ पे हर बच्चे की आदत होती थी कि वो पेड़ पे चढ़े, और हर बच्चा हर पेड़ को उसके चढ़ने की जगह मानता था। और बच्चों, ये जो तोतो चांद का पेड़ था वो मैदान मतलब ग्राउंड के बाहरी हिस्से में था, और वो कौन सी सड़क पर था, कुहोबुत्सु जाने वाली सड़क पर था। तो बच्चों, ये जो तोमो ए है और कुहोबुत्सु है, ये दोनों जगहों के नाम है। और बच्चों, ये जो पेड़ था तोतो चांद का, वो पेड़ बहुत ही बड़ा था, और लोग जब उस पे चढ़ने जाते थे या जब उस पे चढ़ने के लिए तोतो चांद जाती थी तो वो गिर गिर जाती थी। लेकिन अगर बच्चों, ये भी बताया जा रहा है, कोई भी इंसान अच्छे से समझदारी से उस पे चढ़ जाता था तो वो 6 फुट मतलब 6 फीट अबाव था अर्थ सरफेस से, जमीन से, और ऐसा था कि आप आसपास की सारी चीजों को देख सकते हैं। और अगर आप पेड़ पे चढ़ जाएं, तो पूरी जो आसपास की चीजें हैं आपको सब छोटी छोटी नजर आएंगी। और तोतो चांद के लिए वो आरामदेह जगह भी थी, क्योंकि तोतो चांद हमेशा वहां छुट्टी पे चली जाती थी। स्कूल के आने के बाद वो हमेशा वहीं जाकर बैठ जाती थी। तो बच्चों, आपको समझ में आया? चलिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं। आप सब अपनी पुस्तक का पेज नंबर 76 निकाल लीजिए। ओके बच्चों, आप सबने निकाल लिया, चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। वहां से वे सामने दूर तक ऊपर आकाश को या नीचे सड़क पर चलते लोगों को देखा करती थी। बच्चे अपने अपने पेड़ को निजी संपत्ति मानते थे। किसी दूसरे के पेड़ पर चढ़ना हो तो उससे पहले पूरी शुनंता से माफ कीजिए क्या मैं अंदर आ जाऊं पूछना पड़ता था। तो बच्चों, इस पैराग्राफ में आपको ये बताया जा रहा है, ये समझाया जा रहा है कि क्या होता था, जो तोतो चांद थी वो हमेशा उस पेड़ पर, उनके पेड़ पर चढ़ जाया करती थी, क्योंकि जब वो पेड़ पर चढ़ती थी तो उन्हें आसपास का आकाश बहुत ही सुंदर दिखता था और नीचे उन्हें सड़क दिखती थी जहाँ पे लोग जाते आते उन्हें दिखते थे। और बच्चों, ये भी बताया जा रहा है इस पैराग्राफ में आपको कि जो बच्चे थे उनने अपने अपने पेड़ को क्या बना के रखा था, अपनी अपनी प्रॉपर्टी मान के रखा था। ऐसा था कि कोई एक बच्चा किसी दूसरे बच्चे के पेड़ पे बिना उसकी परमिशन के, बिना उससे ये पूछे कि मैं चला जाऊं, नहीं जाता था। और अगर कोई जाता भी था तो वो पूछता था पहले, माफ कीजिए क्या मैं अंदर आ जाऊं, क्या मैं आपके पेड़ पर चढ़ जाऊं। ऐसे सवाल पूछे बगैर कोई भी किसी के पेड़ पे नहीं चढ़ता था। तो बच्चों, आपको समझ में आ गया? चलिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं। आपकी पुस्तक का पेज नंबर 76, पैराग्राफ नंबर 2। यासुकी चान को पोलियो था, इसलिए वह ना तो किसी पेड़ पर चढ़ पाता था और ना किसी पेड़ को निजी संपत्ति मानता था। अंततः तोतो चान ने उसे अपने पेड़ पर इनविटेशन दिया था, आमंत्रित किया था, पर ये बात उन्होंने किसी से नहीं कही, क्योंकि अगर बड़े सुनते तो जरूर डांटते। घर से निकलते समय तोतो चान ने माँ से कहा कि वे यासुकी चान के घर खेलने जा रही है। चूंकि वे झूठ बोल रही थी, इसलिए उसने माँ की आंखों में नहीं झांका। वे अपनी नजरें जूतों के फीते पर ही गड़ाए रही। रॉकी उसके पीछे पीछे स्टेशन तक आया। जाने से पहले उसे सच बताए बिना तोतो चांद से रहा नहीं गया। तो बच्चों, इस पैराग्राफ में ये बताया जा रहा है कि यासुकी चांद जो था उनको क्या था बच्चों, यासुकी चांद को पोलियो था। तो बच्चों, यासुकी चांद जो है उनको पोलियो था, इसलिए वो पेड़ पर नहीं चढ़ पाते थे, क्योंकि आपको फोटो में दिख ही रहा होगा कि यासुकी चांद है, उनके एक पेड़ पे एक क्या है, एक लैंप सा लगा हुआ है, मतलब एक सपोर्ट सा है। तो बच्चों, जब उनका पैर खराब है तो वो क्या नहीं कर पाते थे, पेड़ पर नहीं चढ़ पाते थे। इसलिए ही तोतो चान ने उन्हें इनविटेशन दिया कि आप जरूर आइए और मेरे पेड़ पर चढ़िए। और उसने घर वालों से इसलिए नहीं बताया ताकि लोग उसे डांटे नहीं, क्योंकि लोग, माता पिता उस पर चिल्लाएंगे कि तुम कैसी हरकतें कर रही हो, ये क्या काम कर रही हो, तुम एक बेचारे पोलियो के मरीज को पेड़ पे चढ़ने के लिए इनविटेशन दे रही हो। इसलिए बच्चों, तोतो चांद ने अपनी माँ से बोल दिया कि मैं यासुकी चांद के घर काम से जा रही हूँ और माता की आंखों में, मतलब माँ की आंखों में भी नहीं देखा, क्योंकि वो झूठ बोल रही थी। जो रॉकी था वो उनके पीछे पीछे स्टेशन तक आता है। किसके पीछे बच्चों? हाँ बच्चों, तोतो चांद के पीछे। लेकिन फिर भी जो तोतो चान होती हैं, वो चाहती हैं कि वो जाने से पहले क्या कर दे, रॉकी को सारा सच बता दे। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि तोतो चान ने रॉकी को सच बताया या नहीं। बच्चों आपकी पुस्तक का पेज नंबर 76 पैराग्राफ नंबर 3, मैं यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ने देने वाली हूँ, उसने बताया। जब तोतो चान स्कूल पहुंची तो रेल पास उसके गले के आसपास हवा में उड़ रहा था। यासुकी चान उसे मैदान में क्यारियो के पास मिला। गर्मी की छुट्टियों के कारण सब सूना पड़ा था। यासुकी चान उससे कुल जमा एक ही वर्ष बड़ा था, पर तोतो चान को वह अपने से बहुत बड़ा लगता था। जैसे ही यासुकी चान ने तोतो चान को देखा, वे पैर घसीटता हुआ उसकी ओर बढ़ा। उसके हाथ अपनी चाल को स्थिर करने के लिए दोनों ओर फैले हुए थे। तोतो चान उत्तेजित थी। वे दोनों आज कुछ ऐसा करने वाले थे जिसका भेद किसी को भी नहीं पता था। वे उल्लास में ठिठियाकर हंसने लगी। यासुकी चान भी हंसने लगी। तो बच्चों इस पैराग्राफ में क्या बताया जा रहा है? इस पैराग्राफ में ये बताया जा रहा है, आपको ये समझाया जा रहा है कि जब रॉकी उसे छोड़ने के लिए स्टेशन तक आया तो तोतो चान सबर नहीं कर सकी। उन्हें सबर नहीं हुआ, उनकी पेट में कोई बात नहीं रुकी और वो जल्दी से रॉकी से बोली कि मैं यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ने के लिए बुला रही हूँ। मैंने उन्हें इन्विटेशन दिया है ताकि वो आए और मेरे पेड़ पर चढ़े। और बच्चों जो तोतो चांद थी जब वो स्कूल पहुंची तो क्या हुआ था बच्चों? हाँ, रेल पास उनके आसपास हवा में उड़ रहा था, कि मतलब जिस ट्रेन से वो गई थी उसका जो पास था वो उड़ रहा था। आप भी जब कोई भी रेलगाड़ी से सफर करते होंगे, ट्रेन से सफर करते होंगे, तो आप भी टिकट लेते होंगे। तो बच्चों इससे क्या पता चल रहा है कि उनका स्कूल जो था, उनका विद्यालय जो था, वो बहुत ही दूर था, इसलिए वो काय से जाया करती थी, वो ट्रेन रेल से जाया करती थी। और बच्चों ये भी बताया जा रहा है आपको कि जो यासुकी चान है वो कहाँ पे मिले? उन्हें मैदान में, मतलब ग्राउंड में क्यारियों के पास मिले, फूल फुलवाड़ी के पास मिले। जैसे कि आप इस फोटो में देख सकते हैं, यासुकी चान खड़े हैं और आसपास फूल लगे हैं। तो बच्चों तोतो चान को वो वहां पर मिले। और वो समय कौन सा था? गर्मियों की छुट्टियां थी, समर वेकेशंस थे, तो सारी तरफ, मतलब हर तरफ सन्नाटा था। क्या था? सन्नाटा था, कोई भी बच्चे नहीं थे। यासुकी चान तोतो चान से कुछ एक ही साल बड़े थे, लेकिन तोतो चान को बच्चों ये लगता था कि यासुकी चान उनसे बहुत ज्यादा बड़े हैं। और बच्चों यासुकी चान जो थे, जैसे ही उनने तोतो चान को देखा तो वो अपने पैर को घसीटते हुए तोतो चान की तरफ बढ़े। और बच्चों पैर को क्यों घसीट रहे थे? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया, यासुकी चान जो थे वो पोलियो के मरीज थे और वो कभी पेड़ पे नहीं चढ़ पाते थे, इसीलिए तोतो चान ने उन्हें न्योता दिया था। तो बच्चों जब तोतो चान ने यासुकी चान को देखा तो वो हंसने लगी उल्लास से। एक तरीके से उनके अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी आ गई। क्यों आ गई? क्योंकि आज वो ऐसा काम करने जा रही थी और जिसके बारे में उन्होंने किसी को नहीं बताया था। तो जब बच्चों तोतो चान को हंसते हुए यासुकी चान ने देखा तो यासुकी चान भी हंसने लगे, क्योंकि दोनों ही ऐसा काम करने जा रहे थे कि दोनों ने ही अपने माता पिता को नहीं बताया था कि वो पेड़ पे चढ़ने वाले हैं। तो बच्चों आप सबको समझ में आया? चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। आप सब अपनी पुस्तक का पेज नंबर 77 निकाल लीजिए। ओके बच्चों, आप सबने निकाल लिया। सबसे पहले बच्चों आप ये पिक्चर देखिए, ये चित्र देखिए, ये फोटो देखिए, जिसमें जो तोतो चान है वो ऊपर पेड़ पर बैठी हैं और लैडर लगी हुई है। एक क्या लगी हुई है? सीढ़ी लगी हुई है। जिस सीढ़ी पे क्या है? जिस सीढ़ी की मदद से यासुकी चान ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए बच्चों, अब अपन पढ़ते हैं कि कहानी में आगे क्या मोड़ आता है। आपकी पुस्तक का पेज नंबर 77, पैराग्राफ नंबर 1। तोतो चान यासुकी चान को अपने पेड़ की ओर ले गई और उसके बाद वे तुरंत चौकीदार के छप्पर की ओर भागी, जैसा उसने रात को ही तय कर लिया था। वहां से वे एक सीढ़ी घसीटती हुई लाई, उसे तने के सहारे ऐसे लगाया जिससे वे दिशा का तक पहुंच जाए। वे कुर्सी के ऊपर चढ़ी और सीढ़ी के किनारे को पकड़ लिया। जब उसने पुकारा, ठीक है, अब ऊपर चढ़ने की कोशिश करो। तो बच्चों, इस पैराग्राफ में आपको ये समझाया जा रहा है कि तोतो चान यासुकी चान को लेकर अपने पेड़ की तरफ गई, उस तरफ गई, उस जगह गई जहां पर उनका पेड़ था। उसके बाद वो जल्दी से भागती हुई कहां गई बच्चों? चौकीदार के छप्पर, मतलब चौकीदार का जो छोटा सा हट था, छोटी सी झोपड़ी थी, वहां गई और वहां से किसको लेके आई? वहां से सीढ़ी लैडर को घसीटती हुई लेकर आई। फिर उनने लैडर को जो पेड़ था उसके तने पे लगा दिया, ऐसे लगा दिया कि वो तने पे अटक गया और नीचे जमीन पर उसको फिक्स कर दिया। और जब वो ऊपर चढ़कर बैठ गई और उनने जब सीढ़ी को पकड़ लिया, तब जो तोतो चान थी बच्चों, उनने ऑर्डर दिया या उनने कहा किससे? यासुकी चान से, कि ठीक है, ये जो सीढ़ी है ये अपनी जगह पे अच्छे से लग चुकी है, अब आप ऊपर आने की, मतलब ऊपर चढ़ने की कोशिश करिए। तो बच्चों, आपको समझ में आया कि क्या बताया जा रहा है यहाँ? चलिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं। आपकी पुस्तक का पेज नंबर 77 और पैराग्राफ नंबर 2, दूसरा। यासुकी चान के हाथ पैर इतने कमजोर थे कि वह पहली सीढ़ी पर भी बिना सहारे के चढ़ नहीं पाया। इस पर तोतो चान नीचे उतर आई और यासुकी चान को पीछे से धकियाने लगी। पर तोतो चान नीचे उतर आई और यासुकी चान को पीछे से धकियाने लगी। पर तोतो चान थी छोटी और नाजुक सी, इससे अधिक सहायता क्या करती? यासुकी चान ने अपना पैर सीढ़ी पर से हटा लिया और हताशा से सिर झुकाकर खड़ा हो गया। तोतो चान को पहली बार लगा कि काम उतना आसान नहीं है जितना वो सोचे बैठी हैं। अब क्या करें वे? तो बच्चों, इस पैराग्राफ में आपको ये समझाया जा रहा है कि यासुकी चान के जो हाथ पैर थे वो बहुत ज्यादा कमजोर, मतलब बहुत ज्यादा वीक थे। बच्चों क्यों थे, ये तो मैं आपको बार बार बता रही हूँ, क्योंकि वो पोलियो के मरीज थे, पोलियो के पेशेंट थे, इसलिए वो पहली सीढ़ी पर भी बिना सहारे के नहीं चढ़ सके। बच्चों, जब यासुकी चान की ये हालत तोतो चान ने देखी तो वो जल्दी से ऊपर से उतर आई और नीचे से क्या करने लगी? सहारा देने लगी, धक्का देने लगी, ताकि जो यासुकी चान है वो ऊपर चढ़ जाए। लेकिन बच्चों, आपने फोटो में भी देखा और ये भी आप देख रहे हैं कि तोतो चान जो है वो तो छोटी सी है और नाजुक सी है, तो अब वो कितनी सहायता करती? उनसे ज्यादा सहायता करी नहीं गई, वो ज्यादा मदद कर नहीं पाई। और फिर जब यासुकी चान ऊपर नहीं चढ़ पाए तो यासुकी चान ने अपना पैर सीढ़ी की जो पहली स्टेज थी उसे हटा लिया और वो बहुत ज्यादा क्या होकर, बहुत ज्यादा एक तरीके से गुस्सा तो नहीं थे, लेकिन बच्चों वो डीमोटिवेट हो गए थे। कैसे डीमोटिवेट हो गए थे? परेशान, और एक तरीके से अपनी जिंदगी से उन्हें हार मान ली थी, क्योंकि वो ऊपर नहीं चढ़ पाए इसलिए वो खड़े होके अपना सर नीचे करके चुपचाप खड़े हो गए। तो बच्चों, तोतो चान को पहली बार ऐसा लगा कि जितना आसान वो इस काम को समझ रही थी उतना आसान ये काम नहीं है। और फिर तोतो चान सोचने लगी कि अब मुझे आगे क्या करना होगा, आगे मैं ऐसा क्या काम करूं जिसकी मदद से मैं यासुकी चान को अपने पेड़ तक पहुंचा दूं। तो बच्चों देखते हैं कि आगे क्या हुआ था। आपकी पुस्तक का पेज नंबर 77 और उसके साथ साथ पैराग्राफ नंबर 3, यासुकी चांद उसके पेड़ पर चढ़े, ये उसकी हार्दिक इच्छा थी। यासुकी चांद के मन में भी उत्साह था। वे उसके सामने गई। उसका लटका चेहरा इतना उदास था कि तोतो चांद को उसे हंसाने के लिए गाल फुलाकर तरह तरह के चेहरे बनाने पड़े। ठहरो, एक बात सूझी है। वे फिर चौकीदार के छप्पर की ओर दौड़ी और हर एक चीज उलट पुलट कर देखने लगी। आखिर उसे एक तिपाई सीढ़ी मिली जिसे थामे रहना भी जरूरी नहीं था। तो बच्चों, इस पैराग्राफ में आपको क्या बताया जा रहा है? इस पैराग्राफ में आपको ये समझाया जा रहा है कि यासुकी चांद जो थे, जो पेड़ पे नहीं चढ़ पाए थे, वो बहुत ज्यादा क्या हो गए, दुखी हो गए। और उसके साथ साथ ही यासुकी चांद तोतो चांद की पेड़ पे चढ़े, ये उनकी क्या थी, एक विश थी, एक इच्छा थी। और बच्चों, यासुकी चांद जब बहुत ज्यादा उदास हो गए थे, जब उनने अपना चेहरा लटका लिया था, तो तोतो चांद ने क्या किया? तोतो चांद ने उन्हें बहुत अच्छे से समझाया। कैसे समझाया? बहुत अजीब अजीब चेहरे बनाए, बहुत हंसी मजाक किया ताकि वो क्या कर लें, कभी गाल फुलाकर कभी और तरीके से उन्हें हंसाने की कोशिश करी। तोतो चांद बच्चों इतनी जल्दी हार मानने वाली लड़कियों में से नहीं थी। उन्हें क्या किया? हाँ बच्चों, फिर से वो किसके पास गई? चौकीदार की झोपड़ी, चौकीदार के छप्पर की ओर भागती हुई गई। और वहां पे उन्होंने सारे सामान को एक एक करके देखा। जब वो सारा सामान एक एक करके देख रही थी ताकि उन्हें कुछ अच्छा सा मिल जाए, तभी उन्हें सिपाही सीढ़ी मिली जिसको पकड़ना भी जरूरी नहीं था। तो चांद ने समझ लिया कि यही सीढ़ी है जिसकी मदद से मैं यासुकी चांद को पेड़ तक पहुंचा सकती। चलिए बच्चों, आगे देखते हैं क्या तोतो चांद अपनी चीज में, मतलब अपने प्लान में, अपनी योजना में सफल हुई या नहीं। तो बच्चों, इसके लिए आप सब अपनी पुस्तक का पेज नंबर 78 निकाल लीजिए। ओके बच्चों, निकाल लिया, चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। वे तिपाई सीढ़ी को घसीट कर ले आई तो अपनी शक्ति पर हैरान होने लगी। सिपाही की ऊपरी सीढ़ी दिशका पर पहुंच रही थी। देखो, अब डरना मत, उसने बड़ी बहन की सी आवाज में कहा, ये डगमगाएगी नहीं। तो बच्चों, इस पैराग्राफ में आपको ये बताया जा रहा है कि जो कौन है बच्चों, हाँ, जो तोतो चांद है, वो उस सिपाही सीढ़ी को, मतलब वो तीन पैर वाली सीढ़ी को क्या कर लाई, वहां से उठा के ले आई चौकीदार के छप्पर से और लाके उन्हें रख दिया। और जो उसका एंग था वो किस पे टच कर रहा था? पेड़ पे टच कर रहा था। और बच्चों, तोतो चांद ने यासुकी चांद को अच्छे से बड़ी बहन की तरह समझाते हुए कहा कि ये जो सीढ़ी है, ना ही ये हिलेगी ना ही डगमगाएगी, इसलिए परेशान मत हो और अच्छे से चढ़ जाओ। चलिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं। आपकी पुस्तक का पेज नंबर 78, पैराग्राफ नंबर 3। यासुकी चांद ने घबरा कर सिपाही सीढ़ी और पसीने से तरबतर तोतो चांद की ओर देखा। उसे भी काफी पसीना आ रहा था। उसने पेड़ की ओर देखा और तब निश्चय के साथ पांव उठाकर पहली सीढ़ी पर रखा। उन दोनों को ये बिल्कुल भी पता ना चला कि कितना समय यासुकी चांद को ऊपर तक चढ़ने में लगा। सूरज का ताप उन पर पड़ रहा था, पर दोनों का ध्यान यासुकी चांद के ऊपर तक पहुंचने में रमा था। तोतो चांद नीचे से उसका एक एक पैर सीढ़ी पर धरने में मदद कर रही थी। अपने सिर से वे उसके पिछले हिस्से को भी स्तर करती रही। यासुकी चांद पूरी शक्ति के साथ जूझ रहा था और आखिर वे ऊपर पहुंच गया। तो बच्चों इस पैराग्राफ में ये बताया जा रहा है कि यासुकी चान बहुत घबरा गए थे। अब बच्चों जब कोई भी इंसान कोई भी काम पहली बार करते हैं तो वो घबरा ही जाते हैं। आप भी सोचिए, जब आपको पहली बार स्कूल भेजा गया होगा तो आप भी घबराए होंगे कि आपके टीचर्स कैसे होंगे, आपको मारेंगे तो नहीं, आपको ज्यादा पढ़ाएंगे तो नहीं, ये सारी चीजें सोचकर। आप बच्चों जो यासुकी चान थे वो तो बेचारे बीमार थे, पोलियो के मरीज थे, इसलिए वो और घबरा गए। जब उनने सीढ़ी को देखा और वो पसीने से बहुत ज्यादा तरबतर हो गए थे। बच्चों जब आप बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं या ऐसा महसूस करते हैं जैसे कि आप बहुत बड़ी परेशानी में हैं, तो आपको पसीना भी आने लगता है। और बच्चों सिर्फ यासुकी चान ही नहीं पसीने से तरबतर थे, बल्कि तोतो चान भी क्या हो गई थी, पसीने में गीली हो गई थी। उन्हें भी बहुत ज्यादा पसीना आ रहा था, क्योंकि बिचारियों ने पहले क्या किया, पहले तोतो चान ने पहले वो एक दूसरी सीढ़ी लाई, फिर दोबारा सिपाही वाली सीढ़ी लेकर आई। तो बच्चों यहाँ पे दोनों ही बहुत ज्यादा परेशान थे। और बच्चों जब यासुकी चान तोतो चान की तरफ देखते हैं तो उनके अंदर एक तरीके से मोटिवेशन आ जाता है कि जब ये लड़की मेरे लिए इतनी मदद कर रही है, मुझे इतना ज्यादा सहारा दे रही है, तो मैं खुद एक स्टेप नहीं आगे आ सकता हूँ, क्यों मैं आगे आ नहीं सकता हूँ, क्यों मैं कुछ ऐसा नहीं कर सकता जिससे मैं ऊपर चला जाऊं। तो बच्चों बहुत ज्यादा हिम्मत करने के बाद, बहुत ज्यादा अपने दिल को और अपने दिमाग को समझाने के बाद यासुकी चान क्या करते हैं, ऊपर चढ़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और ऊपर चढ़ने लगते हैं। और बच्चों सूरज क्या हो रहा था, सूरज की जो रोशनी थी, सूरज की जो किरणें थी, वो यासुकी चान और तोतो चान पर पड़ रही थी। और बच्चों दोनों क्या कर रहे थे, हाँ दोनों मेहनत में लगे थे, दोनों मशक्कत में लगे थे, ताकि किसी भी तरह क्या हो जाए, वो अपनी मंजिल को पा ले। तोतो चान जो थी वो नीचे से क्या कर रही थी, यासुकी चान के पैरों को पकड़े हुई थी और उनकी मदद कर रही थी, ताकि वो अपने पोलियो वाले पैरों को एक सीढ़ी से उठाकर दूसरी सीढ़ी पर रखें। और वहीं वो उनके सिर को भी संभाल रही थी, ताकि वो एक जगह रहे और उन्हें कहीं लग नहीं जाए। और बच्चों यासुकी चान की पूरी शक्ति, पूरी मेहनत और तोतो चान की बहुत ज्यादा मेहनत के बाद ये उनका रिजल्ट आया, ये उनकी कामयाबी थी कि वो क्या हो गए, यासुकी चान जो थे वो ऊपर पेड़ पर पहुंच गए। तो बच्चों यही सारी चीजें आपको इस पैराग्राफ में बताई जा रही है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। आपकी पुस्तक का पेज नंबर 78, लास्ट पैराग्राफ। हुर्रे, पर उसे अचानक सारी मेहनत बेकार लगने लगी। तोतो चान तो सीढ़ी पर से छलांग लगाकर दिशका पर पहुंच गई, पर यासुकी चान को सीढ़ी से पेड़ पर लाने की हर कोशिश बेकार रही। यासुकी चान सीढ़ी थामे तोतो चान की ओर ताकने लगा। तोतो चान की रुलाई छूटने को हुई। उसने चाहा था कि यासुकी चान को अपने पेड़ पर आमंत्रित कर तमाम नई नई चीजें दिखाए। तो बच्चों अब इस पैराग्राफ में आपको ये बताया जा रहा है, ये समझाया जा रहा है कि अचानक वो ऊपर तो चढ़ गए, अचानक क्या हुआ बच्चों, तोतो चान की मेहनत से यासुकी चान लेडर पर, सीढ़ी पर तो चढ़ गए, लेकिन वो पेड़ पर नहीं बैठ पाए। जो भी तोतो चान और यासुकी चान ने मेहनत की ताकि वो सीढ़ी से क्या हो जाए, पेड़ पर चले जाए, वो सारी कोशिश के वो सारे स्टेप्स किसी काम नहीं आए। और बच्चों तोतो चान की बहुत ज्यादा ख्वाहिश थी कि वो यासुकी चान को अपने पेड़ पर बुलाए और वो सारी चीजें दिखाए जो उसके पेड़ से दिखती हैं। लेकिन बच्चों अब ना ही तोतो चान कुछ कर पा रही थी, ना ही यासुकी चान। और यासुकी चान बेचारे अपनी धीमी धीमी नजरों से तोतो चान को देख रहे थे और सोच रहे थे कि अब मैं क्या करूं। तो बच्चों, ये जो आपकी ऑडियो है वो यहीं समाप्त होती है। अब अपन मिलेंगे अगली ऑडियो में। तब तक के लिए बाय, नमस्कार, शुक्रिया सुनने के लिए।
सुनो किताब से सुनने के लिए आपका धन्यवाद।